मनुष्य के भी रूप में परिवर्तन होता है। बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर वो गाय बैल बन सकता है, वृक्ष बन सकता है, इसको बहुत तो कहते हैं। और जीव चिन्मय है, रह रहा है जड़ जगत में, जड़ पदार्थ में, लेकिन भगवान का जो धाम है वह अभी चिन्मय है और भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है। वहां चिन्मय प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए उसको केवल या कैवल्य कहते हैं। भगवान कैवल्य में रहते, जैसे सूर्य, सूर्य जहां भी रहता है वो प्रकाश में रहता है ना। सूर्य कभी अंधकार के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य यहां बैठे हैं और चारों तरफ अंधकार भरा हुआ ऐसा हो नहीं सकता। सूर्य जहां है उसके करोड़ों कोष तक प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो इसको कहते हैं कैवल्य। सूर्य कैवल्य में स्थित है, मतलब केवल प्रकाश में। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस जगत में भी आते हैं, ये बैकुंठ पे रहते हैं, कहीं भी वे कैवल्य में स्थित रहते हैं, आत्मनि चिन्मय स्वरूप में, जड़ पदार्थ में नहीं स्थित है। लेकिन और जो तथा कथित गुरु होते हैं और जिनको ईश्वर लोग मान लेते हैं ब्रह्मवश, उन पर आप विचार कीजिए तो वे कैवल्य में स्थित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर भिन्न, शरीर और आत्मा एक है, शरीर यही छोड़ते हैं। शरीर छोड़ते हैं तो कहीं उनकी हड्डी स्मृति में रखी जाती है, तो कहीं उनका दांत रखा जाता है, तो केश रखा जाता है। इसको नहीं कहेंगे कैवल्य में स्थित। कैवल्य का मतलब है कि वो शरीर ही आत्मा है और वो गया अपने धाम में। अवशेष, अब हाड़ चाम ये सब अवशेष नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि केवल में अस्थित है, ऐसा कहने पर कहा जाएगा अकैवल्य में अस्थित। कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर यही रह जाता है ना, और वो चला जाता है। इसका अर्थ है कि कैवल्य में अस्थित नहीं है, केवल चिन्मय प्रकृति में अस्थित नहीं है, बहुत बहुत कंडीशंस। तो भगवान श्री कृष्ण कैवल्य में अस्थित और स एव, और वही प्रभु अपनी स्वरूप में रहते हुए ही जीव लोक कस्य माया मोहित चित, माया से भ्रमित चित्त वाले जीव के हित के लिए धर्म आदि श्रेय की व्यवस्था करते हैं। और सब जीव मायाबद्ध हैं और भगवान माया से परे हैं, तो माया मोहित चित्त वाले जीवों के लिए भगवान ये सब श्रेय आदि की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ देते हैं। हवा से लेकर भोजन से लेकर के स्वर्ग आदि जो कुछ भी सब भगवान देते हैं, वही बनाए। और जैसे कोई कहे कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग बनाया कौन, प्रश्न होगा ना। यहाँ डोंबिवली में इतना घर है, मकान है, सबसे पहले पता लगाना पड़ता है किसका घर है, हम उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये तो सब लिखा हुआ है, इसका घर 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 है। एक मनुष्य का हाथ लग गया है, लेकिन लोक के विषय में तो हम कह नहीं सकते कि यह इसका लोक है, ये बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका कौन बनाया, ये भारत कौन बनाया। तो स एव, वही प्रभु माया मोहित चित्त जीव के लिए भोग बनाए, शरीर बनाए और उसके हित की व्यवस्था करते हैं वेद शास्त्र बना करके, ये समझना है। एक के लिए कहा गया कि मायाम विउदस्य, अपनी चित्त शक्ति से माया को अधीन रखते हैं, अधीन रखते हैं। और जीव के लिए कहा गया माया उसको अपने अधीन रखती है, माया मोहित चित्त से। भगवान माया को बस में रखते हैं और जीव माया के बस में रहते हैं, यही मूल अंतर है जीव में और भगवान में। एक के लिए कह रहे मायाम विउदस्य, विउदस्य माया को बिल्कुल अधीन रखते हैं, और जीव समुदाय क्या है, माया मोहित चित्त से, वो माया के अधीन है, भ्रमित चित्त। तो ऐसे माया मोहित जीवों के लिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं, जो कुछ भी श्रेय धर्मादि लक्षण। धर्म पालन आदि करे, विधि देते हैं और स्वर्ग बनाए हैं, वैकुंठ बनाए, सब कुछ करते हैं, इनके हित के लिए भगवान यहाँ आते हैं अवतार ले लेकर के। अवतार लेकर बताते हैं तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अनंत कोटि जीवों के भगवान पिता है, हितैषी है, इसलिए इस जगत में आते हैं। और सब माया मोहित चित्त है और भगवान माया को बस में रखे। ये अंतर देह करके चलना चाहिए, और खास करके किसी को भगवान स्वीकार करने से पहले ये सब मीटर लगाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी मनुष्य में आप मीटर बैठाते जाए, जीवन इसी में बीत जाए कि ये भगवान है, वो भगवान है। ऑलरेडी पहले से ये सब बात कही जा चुकी है कौन भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, कृष्ण के सामने कोई कंपटीटर नहीं खड़ा किया जा सकता है। नहीं ठीक है, आप भी भगवान है, एक और भी हम भगवान पेश करते और वोट लिया जाए कि कौन भगवान। वोट देने के लिए तो ये उल्लू लोग बहुत वोट देंगे, क्योंकि माया मोहित चेत सब, माया से बुद्धि भ्रमित है, तो किसी भी कंडम व्यक्ति को भी भगवान मान लेते। तो भागवत के प्रकाश में, भागवत के आलोक में हमें कृष्ण को समझना है। अर्जुन के द्वारा और उनकी माता कुंती के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा, और भगवान कृष्ण को समर्पण करना है। वही कृष्ण विठल देव के रूप में है, द्वारकाधीश हैं, वो तो है ही अपने रूप में। बहुत बहुत उनके चरित्र हैं, लीलाएं हैं। तो कृष्ण के इन गुणों का वर्णन सुनकर हमें कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, ये कहा गया था 7:15 में समाप्त करना चाहिए। उसके बाद भागवत की आरती होगी। अभी अर्जुन के कुछ उद्गार रह गए भगवान के बारे में, छाने दीजिए, अभी तो ब्रह्मास्त्र छाया रहेगा कल तक। कुछ उसे हानि होगी नहीं। हरे कृष्णा।
ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोषि संसृते त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां द्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितयात्मनि सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भोग
शुभार जिहिर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चाशकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेवन वेद्म्यहम्। सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम्। हे अनंत ऐश्वर्यवान अथवा महाबाहो, हे महाशक्तिशाली, भक्तानां अपने भक्तों को अभयंकर भयहीन करने वाले, भक्तों का भय नष्ट करने वाले, त्वां आप एकः केवल, दह्यमानानां जलने वाले जीवों के अपवर्गः मुक्ति के कारण असी हैं, संस्कृते है संस्कृति से। थामा के ब्रह्मास्त्र से घबराकर प्राण नाश की आशंका करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। जब अश्वत्थामा रथ त्याग कर भागा तब अर्जुन भी रथ छोड़कर पैदल उसका पीछा किए, लेकिन अभी वो पीछा कर रहे थे तेम ही वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र की ज्योति से प्राणापदम अभिप्रेक्ष, प्राण पर बहुत विपत्ति जानकर अर्जुन लौट आए और आकर पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। इस श्लोक में व्याख्या कर चुका था, इसका संक्षेप में पुनः कह रहा हूँ। प्रस्तुतम विज्ञापयतुम प्रथमम स्तौति, रक्षा की प्रार्थना करने के लिए पहले भगवान श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं अर्जुन। हे कृष्ण, हे परमानंद घन मूर्ति, हे परम ऐश्वर्यवान, हे अपने शरणागत का भय दूर करने वाले, इस संस्कृति से जलने वाले जीवों के लिए आप ही एकमात्र अपवर्ग हैं, उस संस्कृति के नाशक। क्यों से प्रश्न, क्यों मैं ही संसार दुख का नाशक हूँ? क्योंकि आप ईश्वर हैं। त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विरुद्धस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि यतः त्वम ईश्वरः साक्षात्। यह गुण है भगवान का। संसार दवानल में जीव जल रहे हैं, जन्म मरण में पड़े हुए हैं, बंधन में, इससे मुक्ति भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ है सब कुछ के नियामक, जीवों को संसार बंधन में रखना, उन्हें दुख देना या सुख देना, थोड़ा कम करना चाहिए, भगवान के अधिकार में, इसको ईश्वर कहते हैं। अच्छा, ईश्वर भी वे हैं तो साक्षात ईश्वर हैं। संसार में और बहुत से ईश्वर हैं, किसी किसी विभाग के भिन्न भिन्न ईश्वर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, लेकिन वे स्वयं भी कंट्रोल्ड होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाता है तो कार के भीतर बैठा हुआ वो कार का कंट्रोलर है, लेकिन बाहर सिग्नल लाइट उसको कंट्रोल करती है। एक साधारण आदमी खड़ा होकर हाथ दे देता है, ऐसे नहीं, वो कंट्रोल है, नहीं बढ़ सकता। क्योंकि साक्षात ईश्वर नहीं है। साक्षात ईश्वर का अर्थ है जो सदा ईश्वर रहेगा और किसी के बनाने से नहीं बना है, वो अपने आप है, जिसके ऊपर अब दूसरा कोई ईश्वर नहीं, उसको साक्षात ईश्वर कहते। बाकी भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव ये सब साक्षात ईश्वर नहीं है, ये लोग भी ईश्वर हैं, लेकिन इन सब के ऊपर भगवान विष्णु है और विष्णु को कोई नियुक्त नहीं किया है, ये स्वयं ही अपने आप ईश्वर है, इसको साक्षात ईश्वर कहते हैं। तो जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल कर सकता है। एक बार हम देखे बरसाने में बिजली के तार से बस में बैठे हुए लोग झुलस रहे, रथाष्टमी के अवसर, तो कोई व्यक्ति गया और पावर हाउस से काट दिया लाइन। तो जो उस पावर हाउस के स्विच को छुड़ा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, तो इस तरह से कई जलते हुए लोगों को बचा लिया। तो संसार दवानल भगवान के हाथ में है, अधिकार में है। आप ईश्वर हैं इसीलिए बचाते हैं किसी को, तो ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, साक्षात ईश्वर की। साक्षात ईश्वर और परोक्ष ईश्वर में भेद है। परोक्ष ईश्वर का अर्थ है कि जो खास समय के लिए ही कंट्रोलर है और जिसके ऊपर भी कई कंट्रोलर हैं, उसको परोक्ष ईश्वर कहते हैं। और साक्षात ईश्वर का अर्थ है जिससे बढ़ करके कोई नहीं, ईश्वर परम कृष्ण, परम या साक्षात का एक अर्थ है, एक ही अर्थ। अच्छा, क्यों परम ईश्वर हैं? क्योंकि आप प्रकृति से परे परम पुरुष। यह दुख है प्रकृति देती है जीवों को, जन्म मरण में डालना, और आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियामक, प्रकृति से बहुत सुप्रियर है। प्रकृति भगवान की एक शक्ति है, बहुत सामान्य शक्ति, और वह उनके मुट्ठी में, उनके अधिकार में। तत्कुत ये भी कैसे कहा जा सकता है कि भगवान प्रकृति से परे हैं? जत आद्य, क्योंकि आप आदि हैं, प्रकृति के भी जन्मदाता हैं, और प्रकृति जिन जीवों को सता रही है उनके भी कारण आप। तो प्रकृति और पुरुष कहते हैं, जीव को भी पुरुष कहा जाता है, अनंत कोटि पुरुष है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों के आप आदि हैं, आद्य, उनसे ही सब निकले हैं, उनसे सबका कनेक्शन है, तो जैसे जिसको करना चाहे कर सकते, तो आद्य। आद्य का अर्थ है कारणम, भगवान सबके कारण। आदि यहाँ आद्य का अर्थ नहीं है कि सबसे पहले के हैं, पहले का होने से क्या हुआ? तो कई लोग बहुत उम्र के हैं लेकिन कोई कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में नहीं, पहले से होने से क्या होगा? मान लीजिए किसी ट्रेन पर 90-90 वर्ष के बूढ़े लोग बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि 25 वर्ष का एक लड़का उस ट्रेन को चला रहा होगा। पहले का होने से कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ आद्य का अर्थ है सबका कारण, सर्व कारण कारणम, इसको आद्य कारण। हम लोग भागवत के शब्द सुनते हैं तो कभी कभी यथाश्रुत अर्थ ले लेते हैं। यथाश्रुत का अर्थ है कि लोक में उसका जैसा अर्थ सुना गया है वही ले लेते हैं। आदि पुरुष मतलब सबसे पहले के पुरुष है, ये अर्थ नहीं हुआ। सबके कारण है, उन्होंने सबको जन्म दिया है और उनका कोई कारण नहीं, आद्य का ये अर्थ, आद्य कारण। तो जब सब कुछ के कारण है, माया के भी वही कारण है, संसार दुख के सब कुछ के कारण है, जीवों के कारण है, तो प्रकृति की व्यवस्था में इतनी इतनी जो बातें हो रही, इसमें भगवान में विकारिता की संभावना की जा सकती है कि उनका भी चित इस तरह से बदलता होगा, विकृत होते होंगे। तब कहते हैं कारणत्वे अपि अविकारिताम आह, समस्त विश्व का जन्म पालन और प्रलय भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी वे अविकारी रहते हैं। अविकारी, विकार दो अर्थ रखता है, एक तो शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है मानसिक परिवर्तन। तो भगवान के मन शरीर आदि में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ है कि जगत के कारण है, बार बार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, फिर भी वे ज्यों के त्यों हैं। उनके पैदा किए हुए करोड़ों करोड़ों बार लोग जन्मे, बूढ़ा हो गए, मर गए, लेकिन कृष्ण 16 साल के हैं, इसको अविकारिता कहते। कितने लोग जन्मे, मरे, इतिहास लिखा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नवकिशोर, नवजौवन, हमेशा नवजुवक। आजकल लोग बहुत नवजुवक सभा बनाते हैं, तो उनको अपना लीडर कृष्ण को रखना चाहिए, क्योंकि वे इटर्नल नवजुवक। और आज नवजुवक सभा है, लेकिन 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद वही वृद्ध सभा में बदल जाएगी सब, तब दूसरे नवजुवक का सेट आएगा। ये क्षण भंग बदलता रहता है, इसको विकार कर। अच्छा, जन्म दे करके पालने पोषने मारने में भी मानसिक विकार होता है, यह मेरा है, वो है, वो है, कभी हर्षित होना, कभी दुखी होना, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी लोभ, जैसा जीवों में देखा जाता है। तो भगवान इस विचित्र विश्व का निर्माण करते हैं, लेकिन कभी इसमें आसक्त नहीं होते। जिस तरह वे जन्म देते हैं, उसी तरह प्रलय भी कर देते हैं, उनमें विकारिता नहीं है। इसीलिए कहा गया, मायाम व्युदस्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं, वे जहां हैं उनका धाम भी उनका स्वरूप है। जैसे सूर्य जहां भी जाएगा तो अपना घर वो स्वयं साथ में ले जाएगा। घर का अर्थ है उसके चतुर्दिक वातावरण, जहां जाएगा वहीं प्रकाश रहेगा। तो भगवान का धाम या उनके परिकर या उनकी परफरनाली या उपकरण जो भी हैं, वो केवल है, चिन्मय है। तो भगवान हमेशा चिन्मय स्थिति में स्थित रहते हैं, चित्तमय, ज्ञानमय, स्पिरिचुअल स्थिति में रहते हैं कहीं भी। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि स एव वही, सएव का अर्थ है कि यह तुम मायाम अभिभूय अस्थित, सएव जो भगवान माया को वश में रखते हैं, वे ही मतलब अप्रच्युत स्वरूप गुण स्वभाव। भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, माया के भीतर भी रहते हैं, लेकिन अप्रच्युत स्वभाव रहते हैं। भगवान का न रूप परिवर्तन होता है, न उनका भाव परिवर्तन होता है, न उनका धन कम होता है, ज्यों के त्यों रहते हैं। इसको एव शब्द से व्यक्त किया जाए, स एव, स से काम चल सकता था, वह आते हैं इस जगत में, अवतार लेते हैं, लेकिन स एव वही बिना परिवर्तन। भगवान इस जगत में केवल आते ही नहीं है, उन्होंने ही यह जगत बनाया है, वही। लेकिन कुछ भी करते हैं तो एक रस अपनी स्थिति में रहते हैं, इसलिए स एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स एव कार श्रीधर स्वामी जी करते हैं कि जो माया को अभिभूय, माया को वश में रखकर और माया मोहित चित्त जीवों के श्रेय आदि की व्यवस्था करते हैं। तो प्रथम श्लोक से यह सिद्ध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं संसार बंधन से, संस्कृति से। मुक्ति के साथ साथ उपासित होने पर भगवान धर्म अर्थ और काम देते हैं, वही दे सकते हैं। समाज में प्रायः धारणा है कि उपासना करने पर देवता लोग धन देते हैं या सफलता देते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन कहते हैं कि केवल आप ही देने में समर्थ है, चाहे धर्म हो, धर्म का अर्थ है स्वर्गीय लोक, यहाँ स्वर्ग लोक या इस पृथ्वी पर धन और धन साध्य बहुत सी वस्तुएं जिनको काम कहते हैं, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं और धन और स्वर्ग, ये सब भगवान व्यवस्था करते हैं। विधत् से स्वेन विर्जन श्रेयो धर्मादि लक्षण, अपने प्रभाव से भगवान ये सब वस्तुएं उत्पन्न करते हैं और जीवों को देते हैं। जो स्पेशली भगवान की आराधना करते हैं उनको वे देते हैं, और ऐसे जनरल तो सबको दे ही रहे हैं। जैसे सरकार के बहुत से कर्मचारी हैं तो सरकार उनको स्पेशल कुछ देती है, लेकिन ऐसे जितने भी जितनी भी जनता है वो सब सरकार की है ना। प्रजा का सरकार से संबंध है, लेकिन फिर भी सरकार के जो नियुक्त अधिकारी हैं उनको अधिक फैसिलिटी देती है। रोज रोज वे हड़ताल ही करते रहते हैं कि हमें कमी है कमी है, जनरल जनता से उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, फिर भी संतोष नहीं है और मांगते हैं। और ये सरकारी दुलरुआ लोग बहुत पा रहे हैं, तो सब कुछ इनको चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम देखते हैं कि सामान्य जनता भी सरकार की है, लेकिन सरकार के अधिकारी भी सरकार के हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटी है। इसी प्रकार सामान्य कर्म का नियम भगवान ने बनाया है, इसके साथ साथ भक्ति का नियम बनाया है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे धर्म आदि लक्षण, आदि से मतलब अर्थ और काम प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति करने से धन प्राप्त होता है, इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। आदि शब्द से यहाँ सिद्ध हुआ धर्म आदि त्रिवर्ग दाता पिसाय त्वम एव, त्रिवर्ग देने वाले भी भगवान हैं। स एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तथायम चावतारस्ते भुवो भार जिहिर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चाशकृत। तथा अयम अवतार, अर्जुन कहते हैं कि देखा गया है कि आप साधुओं का पक्षपात करते हैं इस संसार में, अवतार लेकर के साधु पक्षपात करते हैं। पक्षपात का अर्थ होता है अपने पंख की छाया करना, जैसे पक्षी अपने पंख की छाया से अपने अंडे को पोसता है, तो उसी तरह भगवान भक्त पर पक्षपात करते हैं, पोसते हैं। पक्षपात ऐसे जनरल सभी जीव भगवान के प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त बनते हैं वे साधु भगवान को बहुत प्रिय है, उनका पक्षपात करते हैं। तो तथायम चावतारस्ते भुवो भार जिहिर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चाशकृत। यह जो आपका